श्लोक आभिराति गिरह काव्येषु भ्रंश इति स्मृताः शास्त्रे तु संस्कृतादन्यद् पभ्रंशत् योदितम्। आभीर आदि अधम वर्ग के लोगों की भाषाएं काव्यों में अपभ्रंश के रूप में स्मरण की गई हैं। शास्त्र में तो संस्कृत से भिन्न को अपभ्रंश के रूप में कहा गया है। प्राकृतिक के पांच प्रकार के देशों के आधार पर बताने के बाद आचार्य ने 36वें श्लोक में अपभ्रंश का परिचय दिया है। जब प्राकृतिक भाषाएं अभिजात वर्ग से जुड़ गईं, तब भी निम्न वर्ग में अभिजात भाषा के विकृत होने की प्रक्रिया चलती रही। भरत ने इस प्रक्रिया से प्राकृतों से निष्पन्न भाषा को हीना विभाषा नाम दिया है। जब यह प्रक्रिया भाषा के एक और पूरी तरह नए स्वरूप को विकसित कर गई, जब उपाध्याय जी उवज्जा से ओझा होते होते झाजी रह गए, तब प्राकृत से भी अपभ्रष्ट होने के कारण अभिजात वर्ग ने इस भाषा को अवहंश, अपभ्रंश तथा अवहट नाम दिया। ब्याडी द्वारा संकेतिक नाम अप्रस्वीकृत हो गया। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि अभिजात वर्ग के धर्म से विद्रोह करने वाले जिस वर्ग बुद्ध और महावीर ने प्राचीन काल में प्राकृतिक पाली भी प्राकृतिक ही है को अपनाया था, अब नई विकसित भाषा को भी उसी वर्ग ने बौद्ध सिद्धों और जैनों ने अपनाया। भरत ने शबर, आभीर, चांडाल, सचर, पशुपाल, द्रविण, उड्र और वनेचरों की बोलियों को हीना विभाषा नाम दिया था। दंडी ने उन्हें ही आभीर आदि की बोलियां कहकर एक सामान्य नाम अपभ्रंश दिया है। इन बोलियों को बोलने वालों में साहित्यिक क्षमता की दृष्टि से आभीर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। भाषा के विकास की प्रक्रिया में तद्भव, तत्सम और देशी का क्रम स्वाभाविक है। यह हम प्राकृतिक के प्रसंग में देख चुके हैं। अपभ्रंश पर भी यह प्रक्रिया पूरी तरह लागू होती है। अपभ्रंश में भी तद्भव, तत्सम, देशज और सर्व शब्द सामान्य, ये चारों प्रकार निहित हैं। यो शुद्धि पर बल देने वाले शास्त्रकारों ब्याडी, पतंजलि और भरत के लिए तत्सम तो प्राकृतिक भाषा उनके लिए संस्कृत है ही। इसके अतिरिक्त जो कुछ है, चाहे वह संस्कृत शब्द का बिगाड़ा रूप हो या उसका भी और तिगड़ा रूप हो, या देशी संस्कृत की प्रकृति प्रत्यय व्यवस्था से बाहर का स्थानीय शब्द हो, सब अपभ्रंश विभ्रष्टि ही तो है। शास्त्रकारों के हत्थे चढ़कर अपभ्रंश भी वही गत हुई जो इससे पूर्व संस्कृत और प्राकृतिक की हुई थी। हेमचंद्र, गणित, त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर और मार्कंडे आदि व्याकरणों द्वारा अपभ्रंश को व्याकरण के अनुशासन में लाए जाने पर इसका भी स्वरूप स्थिर हो गया, पर तत्सम, तद्भव और देशज की लोक प्रवृत्ति चलती रही तथा जिन्हें हेमचंद्र ने ग्राम्य भाषा कहा है, वे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं अस्तित्व में आई। श्लोक संस्कृतम सर्गबंधादि प्राकृतम स्कंधकादि यत् ओसरादिपभ्रंशो नाटकादि तु मिश्रकम्। संस्कृत में निबद्ध काव्य सर्गों में निबद्ध महाकाव्य आदि हैं। प्राकृतिक निबद्ध काव्य स्कंधों में निबद्ध महाकाव्य आदि हैं। ओसर आदि अपभ्रंश में निबद्ध और नाटक, प्रकरण, डीम आदि मिश्रित भाषाओं वाले हैं। भाषा के भेद से काव्य के भेद बताने के बाद आचार्य दंडी ने तद भाषाओं में निबद्ध काव्य विधानों का निर्देश दो श्लोकों में किया है। संस्कृत के आदि काव्य पौलस्त्य, वध अथवा रामायण में कथा का विभाजन सर्गों में किया गया है। परवर्ती कवियों ने भी अपने महाकाव्य में कथा का विभाजन सर्गों में ही किया। इस कारण संस्कृत में सर्गबंध शब्द महाकाव्य के लिए रूढ़ हो गया। एक श्लोकात्मक मुक्तक से लेकर श्लोकों के बृहद समुदाय वाले कोश, संघात, खंड काव्य तक सब छोटे भेद महाकाव्य के विशाल कलेवर में समा जाते हैं। उन सबका ग्रहण आदि शब्द से अभिष्ट है। प्राकृतिक भाषा में भी मुक्तक, कोश, महाकाव्य आदि विधाओं में काव्य रचना उपलब्ध है। संस्कृत से भिन्नता दिखाने को आचार्य ने उस भाषा के काव्यों का उल्लेख उनके निबंधन के आकार प्रकार के आधार पर न करके उनमें बहुतायत से प्रयुक्त छंद की दृष्टि से किया है। संस्कृत कविता में अधिकतया वर्णिक वृत्तों का प्रयोग हुआ है, जबकि प्राकृतिक कविता में मात्रिक जातियों का। दंडी द्वारा पीछे उल्लिखित प्राकृतिक महाकाव्य सेतुबंध में गाहा छंद के प्रकरण में पठित स्कंध छंद का उपयोग किया गया है। प्रकृति के सर्वाधिक लोकप्रिय गाहा छंद का उल्लेख महाकाव्य में उसका स्कंध की अपेक्षा कम उपयोग होने से नहीं किया किया लगता है आदि शब्द से गाहा छंद तथा उसमें निबद्ध कोश गाहा सत्सई अभिष्ट है। अपभ्रंश भाषा में निबद्ध काव्यों के लिए रत्नश्री आदि सभी प्राचीन टीकाओं में घृत व्याख्यात पाठ ओसरादि है। जीवानंद विद्यासागर घृत पाठ आसरादि है। रत्नश्री में ओसर की व्याख्या नहीं की गई है। आसरादि की व्याख्या विद्यासागर जी ने आसारादि छंद की है। आसार छंद चंड वृष्टि प्रपात नामक दंड के भेदों में अन्यतम परवर्ती काल में बताया गया है। अपभ्रंश के छंदों में इसका न उल्लेख मिलता है और न प्रयोग, अतः आसरादि पाठ उचित नहीं प्रतीत होता। पंडित रामचंद्र मिश्र ने ओसर नामक विशेष छंद न जाने किस आधार पर कहा है। इस नाम का कोई छंद संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के छंद शास्त्र में उपलब्ध नहीं होता। ओसर से तरुणवाचस्पति ने प्राकृतिक निबद्ध कोई प्रबंध दिया है तो हृदयंगमा में ऐसे प्रबंध का परिच्छेद। ओसर या ओसरण शब्द जैन साधुओं के उपदेश के प्रसंग में पाई सद महर्णव में घृत है। अपभ्रंश काव्य का विकास सिद्धो नाथों की प्रारंभिक रचनाओं के अतिरिक्त जैन धर्म का उपदेश करने वाले चरियु काव्यों से हुआ है। अतः ओसरादि से उपदेश काव्य आदि अभिप्रेत हो सकते हैं। देशी नाम वाला में ओसार शब्द गोवाट अर्थ में दिया है। यह आभीरों की बस्ती का व्यावर्तक लक्षण है। अतः घोषों में गायों के बाणों के पास किए जाने वाले रासक हल्लिसक आदि गीत प्रधान नृत्य आदि उत्सव में आभीरों द्वारा प्रयुक्त आभीरी अपभ्रंश में निबद्ध काव्य कदाचित ओसर काव्य शब्द से अभिहित होते रहे हों और वही यहाँ ओसार या ओसर शब्द से कहे गए हों। आभीर पल्लियों में गीति युक्त हल्लिसक या रस नृत्यों का उल्लेख भास के बालचरित नाटक में विष्णु पुराण हरिवंश और भागवत पुराण में एवं हर्ष चरित में उपलब्ध होता है। आभीर पल्लियों में स्वाभाविक रूप से इनकी भाषा संस्कृत नहीं रही होगी। पांचवी शती के आसपास अपभ्रंश भाषा का विकास होने पर इन रासक या हल्लिसक नृत्यों में गीत अपभ्रंश भाषा में ही निबद्ध होते रहे होंगे। हर्षचरित में उल्लिखित वीटों के अश्लील रासक पद गीत अवश्य ही अपभ्रंश में निबद्ध रहे होंगे। अतः दंडी को ओसरादि से ये अपभ्रंश भाषा निबद्ध रासक रासो रासो आ रासा मुक्तक का भी अभिष्ट रहे होंगे। अपभ्रंश काव्यों को मुक्तक रासकों से प्रारब्ध यह परंपरा जैन कवियों के चरियु प्रबंध काव्यों से होकर अंत में रासा या रासो नामधारी महाकाव्य में परिनिष्ठित हो गई। पृथ्वीराज रासो खुमान रासो सन्नेह रासय आदि मुख्य रासक ग्रंथ हैं। इतना ही नहीं नवी दसवीं शती तक तो अपभ्रंश छंद शास्त्र में रासक तथा रास नामक छंद उसी प्रकार विकसित हो गए जैसे आल्हाड़ काव्य के प्रभाव से आल्हा छंद रूपक के नाटक प्रकरण आदि भेदों में संस्कृत प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग पात्रों के चरित्र देश सामाजिक स्तर आदि के आधार पर किया जाता है। अतः यह निबंधन के अतिरिक्त इस दृष्टि से मिश्र काव्य परवर्ती कवियों ने काव्यों में भी एकाधिक भाषाओं का प्रयोग किया है। हेमचंद्र गणी के द्वाश्रय काव्य के अतिरिक्त कुमारपाल प्रतिबोध संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश तथा प्रबंध चिंतामणि संस्कृत अपभ्रंश उल्लेखनीय है। श्लोक भूत भाषा मयिम त्वा भूत भाषा मयिम त्वाहुर्द भूतार्था बृहत कथाम लास्य छलितम सम्यादि प्रेक्षार्थ मित्रत पुनः। अर्थ वाली बृहत कथा को पैशाची प्राकृति में निबद्ध बताते हैं। प्रधानता वाली लास्य छलित सम्या और ऐसे ही अन्य भेद दृश्य होते हैं। कथा आख्यायिका आख्यान चंपू खंड कथा परिकथा और कथानिका आदि गद्य काव्य को पृथक पृथक सभी भाषाओं में या मिश्र रूप में लिखा जा सकता है। ये संस्कृत में तो है ही। महाकवि गुड़ाढ़े की बड्ड कहा बृहत कथा पैशाची प्राकृति में निबद्ध थी किंतु गद्य में थी या पद्य में। बृहत कथा की चर्चा बाण ने हर्षचरित में गद्यबंधों के प्रकरण में न करके पद्यबंध और मिश्रबंध की चर्चा करने के बाद उभय कवि कालिदास के बाद सोमदेव ने बृहत कथा का सारंग संग्रह कथा सरिसागर में करते समय बृहत कथा के विस्तार को संक्षेप में पैशाची से भिन्न भाषा में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त मूल से तनिक भी हटाने का निषेध कथा सरित सागर में किया है। यदि बृहत कथा गद्य में होती तो गद्य को पद्य में बदलने की चर्चा वे अवश्य करते। बृहत कथा का पहला संक्षेप बुद्ध स्वामी का बृहत कथा श्लोक संग्रह श्लोकों का संक्षेप ही प्रतीत होता है। श्लोकों में ही नहीं, सोमदेव ने बृहत कथा के लिए काव्य शब्द कथा सरित सागर में कदाचित पद्य बंध अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। हेमचंद्र ने कथा को गद्य या पद्य में निबंध बताया है। धीर शांत नायक का गद्येन पद्येन वा सर्वभाषा कथा काव्यानुशासन अध्याय 8 निर्णया सागर। धनंजय द्वारा दश रूपक द्वारा बृहत कथा की गणना रामायण महाभारत के साथ करने से भी कदाचित यह संकेत लिया जा सकता है कि बृहत कथा भी पद्यबद्ध ही थी। दंडी को कथा गद्य बंध में ही इष्ट है और यहाँ बृहत कथा की चर्चा कथादि के अंतर्गत की गई है। इससे यह आभास होता है कि यह ग्रंथ कदाचित गद्य पद्य ही रहा हो। 12वीं शती के बाद इस ग्रंथ के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते। प्रधानता वाली यह कथा श्रोताओं को विस्मय विमूढ़ करने वाली थी। परवर्ती कवियों के लिए तो यह रामायण और महाभारत के समान शिक्षाप्रद तथा उपजीव्य हो गई थी। रत्नश्री ज्ञान ने पैशाची भाषा में लिखी एक अन्य कथा रत्न प्रभा बताई है। भामह ने भाषा के आधार पर काव्य के भेद नहीं बताए हैं, वे केवल 3 भाषाएं बताकर रह गए हैं। श्लोक लास्य छलितम सम्यादि प्रेक्षार्थ मितरत पुनः श्रव्यमेवेति सैषापि द्वयी गति रुदाह्यता। लास्य छलित सम्या और ऐसे ही अन्य भेद दृश्य होते हैं और अन्य श्रव्य ही इस तरह ये भी 2 प्रकार बताए हैं। निबंध प्रकार और भाषा के आधार पर काव्य शरीर के भेद बताने के बाद विनियोग के आधार पर 2 भेद 39वें श्लोक में बताए हैं। भामह ने इस प्रसंग में नाटक द्विपदी शम्या रासक और स्कंध का उल्लेख अभिनयार्थ के रूप में किया है। इनमें से नाटक 10 प्रकार के रूपकों का उपलक्षक है। शेष द्विपदी आदि भरत के बाद उपरूपकों के रूपक में विकसित दृश्य काव्यों के भेद हैं। रूपकों और उपरूपकों का विनियोग अभिनय से होता है जो सामाजिकों द्वारा देखा जाता है, इसलिए इन्हें अभिनयार्थ प्रेक्षार्थ तथा दृश्य कहा जाता है। उपरूपकों का इतिहास कुछ वक्तव्य की अपेक्षा करता है। भरत में इनका उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ इनका मूल रूप नाट्य में प्रयुक्त सुकुमार लास्य और परुष नृत्य प्रयोग के रूप में मिलता है। विवाह बालक जन्म दामाद के आगमन पर तथा अन्य प्रमोद और अभ्युदय के अवसर पर अत्यंत प्राचीन काल में शुद्ध नृत्य ही होता था, अर्थात काव्य का उपयोग नहीं होता था। बाद में इनमें गीत का समावेश किया गया। ये गीत प्राकृत से इतर देशज भाषा में होते थे। तदनंतर गीतार्थ का अभिनय नृत्य के अंतर्गत होने लगा। फिर तो गीतार्थ के रस तथा भाव के अनुकूल वाद्यों और तालों का भी प्रयोग होने लगा। इस स्थिति में आते आते भरत के लास्य और तांडव नृत्यों का विकास गेय उपरूपकों के रूप में उत्पन्न हुआ। इनके डोम्बिका भाण प्रस्थान शिदगक भाणिका प्रेरण रामक्रीड हल्लीसक रासक गोष्ठी श्रीगदित राग काव्य सम्या छलित द्विपदी नामक भेद चर्चित मिलते हैं। इनमें से किसी का आधार सुकुमार नृत्य लास्य होता है तो किसी का परुष नृत्य तांडव। नृत्यों की नाट्य रूपता के बारे में मतभेद भरत के समय में ही था। भरत के टीकाकारों में तथा बाद में भी इस बारे में विवाद चलता रहा। संक्षेप प्रिय दंडी ने गेय रूपकों के आधार लास्य नृत्य का तथा उससे विकसित छलित और शम्या का प्रेक्षार्थ के रूप में उल्लेख 2 दृष्टियों से किया। नृत्य नाट्य अभिनय है कि नहीं, यह विवाद समाप्त है। ये नाट्य जब नाट्यांग नृत्य प्रेक्षार्थ हैं तो नाटक प्रकरण आदि की प्रेक्ष्यता तो सूत्राम स्वतः प्राप्त है, उसे कहना अनुवाद मात्र होने से अपेक्षित नहीं है। श्रृंगार प्रधान सुकुमार नृत्य लास्य होता है। 10 अंकों वाले इस नृत्य का सविस्तार निरूपण नाट्यशास्त्र के 31वें अध्याय में उपलब्ध है। यह भगवती उमा द्वारा प्रयुक्त होने से देवी नृत्य भी कहता है। वादी जंघाल देव ने इसे पुरुष नृत्य संभवतः भ्रम से कहा है। डोम्बिका शिद्दक हेमचंद्र सिंगक प्रेरण रामक्रीड हल्लीसक श्री गदित सुकुमार है, अतः लास्याधारित है, जबकि भांडभणिका का गोष्ठी उद्धत नृत्य है, अतः तांडवाधारित है। प्रस्थान रासक तथा काव्य दोनों प्रकार के नृत्यों के अल्पाधिक मिश्रण से युक्त हैं, अतः उभयाधारित हैं। श्रृंगार वीर रौद्रादि प्रधान छलित पुरुष नृत्य है, अतः लास्य के विपरीत परुष तांडव प्रधान है। यह तांडव तथा तदाधारित अन्य नृत्यों का उपलक्षक है। छलित के स्थान पर छलिन और छलिक पाठ भी उपलब्ध है। इन दोनों का अर्थ छद्म प्रधान नृत्य होता है। स्त्री नृत्य लास्य के सानिध्य में पुरुष नृत्य के ग्रहण की जो सार्थकता है वह छद्म प्रधान नृत्य की नहीं प्रतीत होती। नाट्यशास्त्र में घनवाद के चंचतपुट नामक ताल के अंतर्गत दक्षिण हस्त का पात शम्या बताया है। दंडी भामा और हेमचंद्र को गेय नृत्य के रूप में अभिष्ट शम्या का प्राचीन विवरण ज्ञात नहीं है। नाट्य दर्पण के किन्नर विषयक लास्य को शम्या बताया है। भोज ने इसे संपा कहा है। हृदयंगमा में शम्या का एक अन्य स्वरूप बताया है। रूपकों रूपकांग नृत्यों तथा रूप उपरूपकों के अतिरिक्त जो काव्य है वे चाहे पद्यबद्ध हो चाहे गद्यबद्ध हो चाहे उभयबद्ध हो तथा जिस किसी भी भाषाओं में निबद्ध हो या मिश्र भाषाओं में निबद्ध हो सब श्रव्य ही होते हैं। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव में पुस्तकों के सुलभ न होने से जनसाधारण के अपठित होने के कारण तथा पुस्तकों को कोई एक जन पढ़ता था तथा बहुत से लोग उसे सुनते थे, अतः दृश्य से भिन्न प्रकार से विनियोग में आने वाले ग्रंथों को श्रव्य कहा जाता था। रूसी क्रांति के काल में दास कैपिटल आदि ग्रंथों का इसी प्रकार श्रवण होता था। आम जनता अक्षर ज्ञान से रहित अनपढ़ जो थी आज मुद्रण के कारण पुस्तकों के सुलभ होने से तथा शिक्षण के प्रसार के कारण ऐसे ग्रंथों को पाठ्य कहा जा सकता है। इस प्रकार निबंधन विधि तथा भाषा के आधार के अतिरिक्त वर्गीकरण का यह आधार नाट्यशास्त्र में बताया गया है। तीसरा आधार भी काव्यों के वर्गीकरण का है। भामा ने काव्य का वर्गीकरण चार प्रकार से किया है। छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर, पद्य और गद्य भाषा के आधार पर, संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश विषय के आधार पर, घटित इतिहास अथवा देवादि के चरित्र, कवि कल्पना प्रसूत वस्तु, कला शास्त्र को आश्रय बनाकर काव्य का प्रणयन किया जाए। स्वरूप विधान के आधार पर, सर्गबंध अभिनयार्थ आख्यायिका कथा अनिबद्ध। भामा ने इन चारों में से अंतिम प्रकार के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण ही किया है, शेष का निर्देश मात्र किया है। दंडी का वर्गीकरण अधिक व्यवस्थित स्वाभाविक एवं गंभीर है। उन्होंने पुरानी मान्यताओं का खंडन युक्ति पूर्वक किया है। अर्थ की गंभीरता लिए हुए संक्षेप तो दंडी को विशेष प्रिय है। इस प्रकार दंडी काव्य शरीर संबंधी चिंतन को अपने समय से आगे बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। उनके इस महत्व के कारण ही महाप्रतीभ हेमचंद्र गणी ने महाकाव्य के लक्षण में उनके प्रतिपादन को न केवल शब्दतः या अर्थतः अपनाया है अपितु उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाया है। श्लोक अस्त्यनेको गिराम मार्गः सूक्ष्म भेदः परस्परम् तत्र वैदर्भ गौड़ीयौ वर्णयते प्रस्फुटांतरौ। वाणियों के आपस में सूक्ष्म अंतर वाले अनेक रचना प्रकार हैं। उनमें से स्पष्ट अंतर वाले वैदर्भ और गौणी रचना प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। तीन दृष्टियों से काव्य शरीर का भेद बताने के बाद आचार्य दंडी अब पदावली को इष्टार्थ से व्यवच्छिन्न करने की दो शैलियों का वर्णन करके इस दृष्टि से काव्य शरीर के शैलीगत दो भेद बता रहे हैं। देश भेद से लोक के स्वभाव आचार भाषा और शैली आदि में भेद हो जाता है। यह पीछे श्लोक 34-35 में कहा जा चुका है। भरत ने भारतवर्ष के प्रदेशों के वेश भाषा आचार जीविकाओं की अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियों को देखकर उन प्रवृत्तियों का वर्गीकरण चार भेदों में किया था। इसी आधार पर काव्य की भी विविध प्रकार की शैलियाँ देश भेद से वहाँ के कवियों की चित्तवृत्ति के अनुसार बन जाती है। इन शैलियों में परस्पर बारीक से अंतर हुआ करते हैं। दंडी ने उनमें स्पष्ट अंतर वाले शैली भेदों को मान्यता देकर इस अंतर के कारण उनके दो भेद माने हैं, वैदर्भ और गौणी। भरत ने गुण के प्रकरण में मिठास और आडंबर को विशेष महत्व दिया है। दंडी ने संभवतः इसी विशेष अंतर को आधार मानकर माधुर्य प्रधान वैदर्भ और आडंबर प्रधान गौणी इन दो मार्गों को मानना उचित समझा। विदर्भ देश दक्षिण का प्रतिनिधि है। भरत के अनुसार वहाँ के लोगों को गीत नृत्य वाद्य बहुत प्रिय है तथा उनमें चातुर्य माधुर्य एवं लालित्य अधिक है। गौण देश के पूर्व के अंग बंग कलिंग वत्स मगध प्राग्ज्योतिष पुलिंद और ताम्रलिप्ति आदि का प्रतिनिधि है। भामह इस मार्गभेद कल्पना के विरुद्ध हैं, किंतु परवर्ती आचार्यों ने उनकी इस मान्यता को स्वीकृति नहीं दी। वामन ने इस विशेषता को रीति नाम देकर उसे काव्य की आत्मा बताया है। उन्होंने मधुर और उदार का समन्वय करने वाली शैली को पांचाली नाम दिया है, अर्थात उन्होंने भरत की आवंती और पांचाली प्रवृत्तियों में बहुत सूक्ष्म अंतर समझकर उन्हें अलग अलग मानना उचित नहीं समझा और उन दोनों को एक पांचाली नाम ही दिया है। उन्होंने भामह के मार्गभेद खंडन का उत्तर रीतियों का अतिशय महत्व बताकर दिया है। जिस प्रकार रेखाओं से चित्र का निर्माण होता है, वैसे ही रीतियों से काव्य का निर्माण होता है, अर्थात रेखा और चित्र की तरह रीति और काव्य परस्पर अविनाभूत हैं। अग्नि पुराण में लाठी की उद्भावना और की गई है। धाराधराधीश भोजराज ने इस सूक्ष्म अंतर को उतना सूक्ष्म नहीं समझा और आवंती लाठिया एवं माघधी नामक तीन अन्य रीतियों की कल्पना की। उद्भट भट्ट तथा मम्मटाचार्य मार्ग या रीति को महत्व देने के विरोधी हैं। उन्होंने वृत्त अनुप्रास में अपेक्षित वृत्तियों के रूप में लिया है।